Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's M-E-N-T-Z-A.
स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स और आज के हमारे कहानी के लेखक का
और मोहित जी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो इनका बहुत शुक्रिया और स्वागत भी.
और हमारे साथ अभी धीरे धीरे लिसनर्स जुड़ रहे हैं तो आप वसीम जी कहानी के बारे में तब तक कुछ बताइए हमारे प्रोग्राम के बारे में. तो अभी तक तो सब लिसनर्स को पता चल चुका है क्या प्रोग्राम है बट फिर भी हम एक बार बताना.
हाँ, फिर भी कुछ ना कुछ हर सप्ताह जो है कुछ नए लिसनर्स भी जुड़ते हैं जी. तो इसलिए बताना जरूरी है कि ये कहानी बुनो का जो प्रोग्राम है वो कहानी लिखने का है, कहानी बुनने का प्रोग्राम है. तो उसमें कहानियां लिखी जाती हैं, टॉपिक दिए जाते हैं और उस पर कहानियां आप सुनते हैं और टॉपिक को समझते हैं, उसके बाद उस पर कहानियां लिखते हैं, वही प्रोग्राम है. बहरहाल वक्त हो चला है दीपिका जी, मुझे लगता है
जी बस एक सेकेंड तो और
शुरू करते हैं दोस्तों. गुड इवनिंग सबको. आज है कहानी का दसवां, कहानी बुनो प्रोग्राम का दसवां एपिसोड और हम सब बैठे हुए हैं अपने अपने जगहों पर. अभी मेरे हाथ में चाय है दीपिका जी और आज का दिन चाय के लिए ही मुनक्किद है मुझे लगता है. आपने जैसा कि हमें बताया है ये चाय दिन भर की जो मेरी थकान है ना अभी उतार रही है, क्योंकि आज मैं पूरे दिन सफर में रहा. थकान उतारने की इसकी जो खासियत के चलते ही शायद हम कहते हैं कि मेहमान आए हैं तो कुछ चाय पानी का इंतजाम हो जाए. चाय की तासीर ठंडी होती है इसलिए ये हमारे कल्ब को राहत भी देती है, इसलिए हमें ज्यादा पसंद है बाकी और पेय पदार्थ के मुकाबले कि हम चाय ही ज्यादा पसंद करें. चाय की अलग अलग सिफतें भी हैं, रंग और रूप भी अलग अलग होते हैं और स्वाद के तो क्या ही कहने, जितनी जुबाने उतने स्वाद. कोई दूध की चाय पसंद करता है तो कोई काली चाय, कोई मीठी चाय पसंद करता है तो कोई बिना शक्कर वाली, कोई गाढ़ी चाय पसंद करता है तो कोई हल्की फीकी चाय. वहीं लेमन टी की अपनी ही दुनिया है जो कहीं ना कहीं हमारी सेहत की अलमबरदार भी है और यही वजह है कि बाजार हर शख्स के स्वाद और सेहत के एतबार से चाय की किस्मों से भरा पड़ा है. हम सभी जानते हैं बाजार जाते हैं ले आते हैं चाय अपने अपने पसंद और शौक के एतबार से. मैं लेखक हूं इसलिए मुझे चाय बेहद पसंद है और मैं देर रात तक जगता हूं लिखने के लिए तो इसलिए चाय की तलब लगती रहती है. और एक वाक्य मुझे याद आ रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड. जब मैं अखबार में काम कर रहा था, रिपोर्टर था, तो मेरे ऑफिस के बाहर एक कैंटीन थी. वो अभी कैंटीन हाल ही में खुली थी. शाम के वक्त अपनी स्टोरी फाइल करने के बाद मुझे जब चाय की तलब लगी तो मैं कैंटीन पहुंच गया. चाय बनाने वाले भैया से कहा पत्ती ठोक के चीनी रोक के. चाय वाला हंसने लगा, उसे समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या कहा या मैंने उसे क्या मांगा. तो वो अचकचा गया और परेशान हो गया. फिर मुझसे दो तीन बार पूछा तो मैंने कहा भैया पत्ती ठोक के चीनी रोक के. तो वो कहा आप मुझे क्लियर बताएं कि आपको चाय में पत्ती चीनी का क्या कॉम्बिनेशन क्या है. तो मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया, देखो भाई पत्ती ठोक के का मतलब होता है चाय की पत्ती की मिकदार यानी उसकी जो मात्रा है वो ज्यादा हो
ज्यादा.
और चीनी रोक के का मतलब है कि चीनी की मिकदार जो है उसकी मात्रा जो है थोड़ी कम हो. इतना सुनना था कि वो जोर से हंस पड़ा, बोला कि भैया आप सीधे सीधे भी तो बात कह सकते थे. तो मैंने कहा कि हाँ कह सकता था, फिर मेरे लेखक होने का क्या. खैर हम चाय पीने वालों की कहानियां और किस्से एक से बढ़कर एक दिलचस्प किस्से मशहूर हैं. तभी तो मैंने एक शेर लिखा था दीपिका जी, मुझे याद आ रहा है कि कोई गर इश्क पे बुलाए तो यूं मुकर जाना.
वाह.
कोई गर इश्क पे बुलाए तो यूं मुकर जाना, हाँ मगर चाय पे बुलाए तो दौड़ कर जाना
जरूर जाना. वाह वाह.
चाय की दीवानगी ऐसी है दोस्तों जो ना तो वक्त देखती है और ना हालात. तभी तो हमारे इस प्रोग्राम की क्रिएटर यानी दीपिका जी ने आप आज के एपिसोड का टॉपिक रखा है चाय रे चाय. इस टॉपिक पर मोहित जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत खूबसूरत इन्होंने एक कहानी लिखी है. कहानी है मतलब वो एक लेटर है चाय से, चाय को लेकर. तो सुनते हैं पहले कहानी और फिर बात करते हैं मोहित जी से इस कहानी के बारे में कि कैसे इस ऐसा बेहतरीन लेटर लिखने का आइडिया उनके दिमाग में आया. हमारे टॉपिक से रिलेटेड भी है और खूबसूरत एक मैसेज भी है. तो दीपिका जी पहले कहानी सुन लेते हैं,
जी
फिर
बिल्कुल
बात करते हैं अगले टॉपिक पर और फिर आगे की चर्चा जारी रखें।
जैसा कि आपने कहा कि आज की कहानी हमारी एक पत्र के रूप में आई है, तो वो शायद आज के दौर के बच्चे या हमारे बाद के वाली जेनरेशन जो शायद उस चीज को ना समझ पाए, क्योंकि वो दौर था जब चिट्ठियां या खत लिखे जाते थे, डाकिये का इंतजार होता था और घर घर पहुंचते खत और लिखने वाले का एक एक शब्द उसके इमोशंस और जज्बात से भरा होता था। वो शायद अब वो फीलिंग नहीं समझ में आएगी, व्हाट्सएप और ईमेल्स के दौर में ये नहीं समझ में आएगा, बट जिस तरह से मोहित जी ने लिखा है, ठीक है पत्र कई बार हम किसी के लिए लिखते हैं तो जरूरी नहीं हम उसको भेजते ही हैं, कई बार हम अपनी बातों को कहना चाहते हैं जो कि हम पत्र के रूप में कह जाते हैं। तो इसी तरह की कहानी आज मोहित जी ने लिखी है, बहुत खूबसूरत छोटी सी कहानी है। तो प्रस्तुत है चाय पर एक बहुत ही खूबसूरत दिल को छू लेने वाली कहानी मोहित जी की ओर।
बिल्कुल, हम सब मुंतजिर हैं सुनने के लिए इस खूबसूरत कहानी को।
तो पत्र इस तरह से शुरू होता है, प्रिय अमर कैसे हो। वैसे तो आजकल कोई किसी को पत्र नहीं लिखता, मोबाइल व्हाट्सएप के जमाने में ईमेल भी ओल्ड फैशन हो गया है, तो खत कौन लिखेगा। मगर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूं, शायद जो कुछ मुझे कहना है वो व्हाट्सएप पे ठीक ना होगा, शायद मैं खुद ही नहीं जानती कि मैं कहना क्या चाहती हूं, फिर भी कोशिश कर रही हूं। कल जाने क्यों रात भर सो नहीं पाई, आज सुबह जल्दी उठ गई, मन तो कर रहा था नीचे टहल आऊं, लेकिन कपड़े बदलना, लिफ्ट पकड़ना, नीचे जाके दौड़ते बच्चों और हॉर्न मारती स्कूल बसों को देखने का ख्याल और अनमना कर गया, सो एक प्याली चाय बना ली और बालकनी में बैठी रही। चाय में भी बहुत स्वाद नहीं था, कुछ लोगों को इलायची चाहिए, कुछ को अदरक, कुछ दूध पहले डालते हैं और 15 मिनट तक उबालते हैं, तो कुछ पानी में चाय बना बाद में दूध मिलाते हैं। सबकी अपनी अपना तरह की चाय और अपने अपने स्वाद, लेकिन मेरा हमेशा से मानना था कि सबसे अच्छी चाय वो होती है जो कोई और आपके लिए प्यार से बनाए। जब तक तुम थे घर में चाय तुम ही ने बनाई, कभी मैं कहती भी थी कि आज मैं बना दूं तो हंसकर कहते थे जब तक हूं तब तक पी लो, बाद में बनाती रहना। कमाल ये था कि तुम्हें 5 मिनट भी नहीं लगते थे और चाय किसी भी शानदार होटल से नहीं कोने की चाय की टपरी से भी अच्छी बनाते थे। कैसे करते थे तुम, कम से कम इतना ही बताते जाते। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, मैंने तुम्हें उससे पहले ही बोला था कि मुझे घर का कोई भी काम अच्छा नहीं लगता और तुम्हें तो जैसे मन मांगी मुराद पूरी मिल गई। किचन पर एक छत्र राज हो गया था तुम्हारा, मैंने कितनी बार कहा भी कि एक कुक रख लेते हैं, मगर तुम हमेशा मुस्कुरा के पूछ लेते, क्यों मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा तुम्हें। मैं तो दिन भर ऑफिस में रहती थी, तुम्हें वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ था, सारा घर तुम्हारे कंधों पर था, शाम को खाना बना तुम मेरा इंतजार करते थे, हमेशा एक सवाल, आज का दिन कैसा था, और फिर जब तक मैं कपड़े बदलती चाय बनकर तैयार, हम इसी बालकनी में बैठ इस शहर को देखा करते जिसकी सड़कों को रात को भी चैन नहीं मिलता है। कभी कभी तुम डिनर के बाद एक ड्रिंक बनाते थे और अपना गिटार निकाल लेते थे, रात जैसे जैसे गहराती तुम्हारी आवाज का जादू और ड्रिंक का सुरूर दोनों अपना काम कर दिखाते थे। अगली सुबह मेरा लेट पहुंचना तय था ऑफिस, दिन भर में अपने आसपास चाय की खुशबू को महसूस करती रहती। तुम्हारी चाय का हमारे दोस्तों में भी बड़ा बोलबाला था, याद है तुम्हें? ऑफिस में भी अमर की चाय की बात कुछ दिनों पर हो ही जाती थी। शायद हमारा इकलौता घर था जहां पार्टी में आने पर ड्रिंक से पहले लोग चाय पीते थे। कैसा पागलपन था चाय का। तुम खुद कभी कभी हंसते, मैं शायद किसी अंग्रेज की औलाद हूं जो उनसे कुंभ मेले में बिछड़ गया था। किचन में एक पूरी शेल्फ तुम्हारे चाय के कलेक्शन के नाम थी, उलोंग, दार्जिलिंग, असम, सिलोन, चाइना, ग्रीन, ब्लैक, ऑरेंज, पीको, उफ, और भी ना जाने कितनी चाय थी। तुमसे मिलने से पहले मुझे पता भी नहीं था कि इतनी तरह की चाय होती है। हर मूड की अलग, हर समय की अलग, हर मौसम की अलग और हर दर्द की अलग चाय। मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था जब मैं ऑफिस से लौटी और तुमने मेरे दिन के बारे में नहीं पूछा। लेकिन मैं ऑफिस के प्रेशर में थी। उसके बाद धीरे धीरे चाय का स्वाद थोड़ा अजीब सा होता गया। तुम अक्सर शाम को चाय की जगह ड्रिंक बना लेते थे, लेकिन अब कुछ ड्रिंक के बाद तुम करवट लेके सो जाते थे। तुम्हारा गिटार कमरे के एक कोने में पड़ा अकेला ही रोता रहता था। और फिर एक दिन जब मैं वापस आई तो, अमर, जानते हो, तुम्हारे जाने के बाद मुझे चाय से नफरत सी हो गई थी। फिर एक दिन किचन में कुछ ढूंढ रही थी तो तुम्हारी चाय की शेल्फ पर नजर पड़ी। मैंने बारी बारी सारे डिब्बे जमीन पर पटक दिए और बहुत देर तक रोती रही। कुछ फंस गया था मेरे अंदर जो अब बह निकला था। खैर, कोई किसी चीज से कितना भी मुंह फेरे, चाय से कैसे फेरे। और अब एक यही तो जरिया है तुम्हें फिर से महसूस करने का। अब भी तुम्हारी स्मिता। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत पत्र, बहुत ही खूबसूरत मोहित जी।
और उतनी खूबसूरत आपकी अदायगी, कितना खूबसूरत आपने पढ़ा है दीपिका जी, आपको अंदाजा नहीं है। हम लोग सुन के सिहर रहे थे। वो मुझे एक वाक्य याद आ रहा था कि आदमी जब बिछड़ता है ना तो स्वाद भी बिछड़ जाता है
जी,
है ना। तो मोहित जी ने कुछ ऐसा ही अपनी इस कहानी में जिक्र किया है। तो मैं मोहित जी से ये पूछना चाहूंगा कि हमारा टॉपिक तो चाय री चाय है, कैसे आइडिया आपको आया इस तरीके का, इस तरह की कहानी लिखने का जिसमें मतलब चाय के साथ एक रोमांस, खुशनुमा माहौल घुला होता है, मगर आपने इसमें दर्द पिरो दिया।
तो सबसे पहले तो दीपिका जी मतलब बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से रिसाइट किया मुझे तो लगा ही नहीं कि ये मेरी कहानी है। ये
आपने बहुत खूबसूरत लिखी है।
दीपिका जी की यही तो खासियत है कि वो हर कहानी को अपना बना लेती हैं।
उन्होंने अपना बना लिया, मतलब मैं खुद ही कहानी सुन के, मतलब इसकी रिकॉर्डिंग शायद मैं एक आध बार और सुनूंगा बाद में। तो और जब मैं मतलब टॉपिक चाय था और मैं लिखने बैठा था तो पहले मैंने एक आध लाइने कुछ और लिखी थी, लेकिन मेरे अपने जीवन में भी मैंने ये देख महसूस किया है और काफी लोगों ने ये किया होगा कि कुछ स्वाद ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ रिश्ते जुड़े होते हैं।
बिल्कुल, हाँ,
तो और उनका असली मजा वो उस चीज का नहीं होता है, उस रिश्ते का होता है। तो जैसे हम कॉलेज में होते थे तो जो चाय की टपरी पे हम चाय पिया करते थे उसका स्वाद याद ऐसे ही है कि वो स्वाद दोस्तों का स्वाद था।
दोस्तों का है,
दोस्ती का स्वाद था। तो वहां से ही बात जैसे चल निकली, और मतलब ये लिटरली एक सेटिंग सिटिंग में मैंने 2 घंटे में लिखी थी, क्योंकि ये अपने आप ही बनती गई कहानी, मैंने इसमें कुछ किया ही नहीं। तो
मतलब दोस्तों से बिछड़ने की कहानी हो गई ये तो।
ये वैसे ही है कुछ।
मनोज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज बताएं कहानी आपको कैसी लगी और इसके बारे में।
वसीम साहब, और कहानी बहुत ही खूबसूरत है। जैसे मोहित साहब को मैं कमेंट में भी लिख रहा था कि इतनी खूबसूरत कहानी उन्होंने कही है, और ये वाली बात तो बिल्कुल सही है कि चाय की जो चुस्कियां हमने हॉस्टल्स में और जो टपरियों पे दी है, वो शायद उसका स्वाद अब कहीं खोता भी चला जाता है जब हम ऑफिस के अंदर चाय पी लेते हैं तो। लेकिन वो जो टपरी में बैठ करके चाय पीने और बरगद के पेड़ के नीचे, मैं आज भी, मैं आपको बताऊं, कनॉट प्लेस का एक हिस्सा है, जब अपने ऑफिस जाता हूँ कनॉट प्लेस में, तो मैं जरूर एक कोशिश करता हूँ कि मैं उस रास्ते से होकर के जाऊं कि जिस बरगद के पेड़ के नीचे टपरी थी तो वहां पे प्रकाश लड़का हुआ करता था। तो आज भी वो है, अब वो बड़ा हो गया उम्र में, तो उसके पास मैं जाकर के उससे अभी भी बात करता हूँ कि यार वो चाय वैसी एक बार पिला दे यार। तो वो जो चाय है ना, वो चाय का जो कनेक्शन होता है वो हमारे जिंदगी के साथ बहुत गहरा जुड़ा रहता है, और चाहे वो घर में भी हो, अभी लड़ाई भी हो जाए कभी घर में तो एक चाय बन जाए तो फिर वो सारी बातें वहीं खत्म हो जाती हैं, चाय
सारी बातें खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल
सब
सर,
खत्म हो
मतलब सर
जाती है एक
चाय
किस्म
से, तो सर चाय से जुड़ा कोई ऐसी कहानी जो इंटरेस्टिंग हमारे लिसनर सुनना चाहेंगे, क्योंकि जब हम टॉपिक देते हैं तो हम चाहते हैं कि और हम ज्यादा से ज्यादा इससे गहराई में जाकर जुड़ सके, ताकि कहानियां लिखने में
जी
हमारे लिसनर्स को आसानी हो।
जी जी
कोई ऐसा वाकया?
हाँ, तो ऐसा वाकया है ना, तो मैं एक अभी बड़ा खूबसूरत वाकया है। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं मोहित साहब से पूछ रहे हैं? अच्छा, मोहित साहब
नहीं,
को
मैं आपसे पूछ रहा हूँ मनोज सर।
अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं ये आपको बताऊं कि बड़ा ही एक दिलचस्प किस्सा है। कश्मीर में मैं था, कश्मीर में, ये बात है 2020 की जनवरी की, तो
वहां की
दो
तो
साल
नून
पहले
चाय की
था।
कहानी होगी।
नहीं, मैं बताता हूँ क्या हुआ। मैं एक जगह पे, ऐसी जगह फंस गया जहां पर थोड़ा सा वो डिस्टर्ब एरिया है डाउनटाउन श्रीनगर के अंदर। तो हुआ कि
जी
जब मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, तो मैंने आओ ना देखा ताओ, वहां पे एक कश्मीरी जो है वो चाय बना रहे थे। तो मैं वहां पहुंचा और कुछ लोग वहां बैठ करके मुझे बड़ी देर से घूर रहे थे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अरे जनाब क्या हाल चाल है, सलाम वालेकुम और ये वो। तो वो लगा किस मिशन पे आए हैं। मैंने कहा छोड़िए ना चाय पीजिए। तो वो चाय जब शुरू हुई, नहीं, सच बात है वसीम भाई, जब जैसे हुई मैंने कहा छोड़िए ना,
हाँ
तो जब चाय पीना शुरू हुआ तो वो ऐसे खुले मेरे साथ, वो दो लड़के बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे इतनी कहानियां बताई त्राल की कि किस तरीके से वहां पे टेररिज्म होता है, कैसे आर्मी करती है, कैसे इंसर्जेंसी होती है। वो चाय उसकियां लेते हुए, सिर्फ चाय पे जो हमारी बातें शुरू हुई, वो वसीम भाई अभी तक, मतलब कल मैंने ईद उनको मुबारक करी है, और आप सोचिए
वाह
वसीम,
क्या बात,
मुबारक हो वसीम भाई। तो
बिल्कुल
ईद,
शुक्रिया आपको भी।
तो कल कल तक, मतलब सोचिए कि वो 2 साल पहले जो, जिससे हम, मतलब एक डर था कि पता नहीं कौन लोग हैं और मुझे बोल रहे थे किस मिशन पे आए हैं, सिर्फ चाय के ऊपर जो चर्चा हुई और बातें हुई इतनी खूबसूरती के साथ कि वो आज दोस्त बन गए। कल ईद के ऊपर पूरी दिन हमारी, मतलब 1 घंटा बात हुई, फोन आया और कश्मीर से, और पूरी बातें होती रही। तो देखिए चाय का तो ये जलवा है जनाब, कि डर भी जो है मोहब्बत में पैदा हो जाता है, कम कन्वर्ट हो जाता है।
और कश्मीर में सर मैंने सुना है एक नोन चाय है, का नाम से मशहूर है, जो नमक वाली चाय होती है, उसकी
नून
तासीर
चाय,
कुछ
हाँ, नमक
अलहदा सुना।
नमक डलता है उसमें, और उसके साथ एक और है कहवा, जो वो उसको
कहवा
चाय की
कहवा
तरह ही लेते
कहवा
हैं, कहवा।
बिल्कुल
हाँ, मतलब उसको कहवा, एक्चुअली उर्दू में उसको कहवा बोलते हैं। तो कहवा जो है वो वाकई जो बहुत ही खूबसूरत चीज, उसके अंदर जितने भी केसर और इलायची डल करके वो जो चाय बनती है, दूध नहीं होता बस उसके अंदर, लेकिन इतनी खूबसूरत। तो उसके ऊपर तो आप देखिए कि कश्मीरियों का तो ये कहना है कि कश्मीरों की कमाई जो है मकान और वाजवान ने खाई। तो वाजवान खाना है, खाना जो है वो वाजवान है और मकान, तो ये दो चीजें उनके लिए बहुत मशहूर है। और जैसे आप गले मिलते हैं, और चाय और कहवा के ऊपर तो जो दोस्ती होती है, तो देखिए कि जहां मैं सोच रहा था कि मेरे को खतरा है जिन लोगों से, उनके साथ जब चाय की चुस्कियां ली तो मोहब्बत इतनी गहरी हुई कि कल तक हम लोग बात कर रहे थे।
बस चाय की
मतलब
यही तो
उनके
खासियत है,
जबान
कितने
के जायके
रिश्ते
से
बना
दिल
देती
के
है।
सारे राज खुल जाते हैं।
जी, बिल्कुल सही
कितने
कहा।
रिश्तों को जोड़ती है
जी
चाय।
जी बिल्कुल जनाब, सही कहा।
तभी तो
बहुत
तभी
बहुत शुक्रिया मोहित
का नाम
जी
बाघ
आपका।
बकरी है।
बहुत बढ़िया।
बहरहाल मैं जब कश्मीर गया था मनोज सर, तो मुझे बटर वाली चाय पीने को मिली थी। वो एक बड़े से बांस की तरह बड़ा सा एक प्यूपा था, उसमें उन्होंने बटर को डाल दिया और बहुत देर तक उसमें मथते रहे, फिर उसमें से जो चीज निकला उसको गर्म पानी में करके डाला, वो बहुत अलहदा स्वाद था उसका, बटर चाय का। तो एक वो भी है, एक वो भी है, मतलब चाय की जितनी सिफते हैं ना, मतलब हम लोग उतना नहीं जानते। अभी हर जगह हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से चाय बनाई जाती है, पी जाती है। बहरहाल दीपिका जी,
मैंने तो नागालैंड में बैम्बू टी पी हुई है।
हाँ,
वो बैम्बू के अंदर वो डाल करके वो पता नहीं क्या बनाते हैं और उसको बड़ा ऊपर रख करके
कुछ वैसा बनाते हैं बैम्बू के अंदर।
आजकल तो बहुत फ्लेवर्स की चाय है, चॉकलेट चाय भी आती है अब तो।
लेकिन स्वाद वही है।
बहरहाल आगे बढ़ते हैं दीपिका जी,
टपरियों वाला है, टपरियों का
आज का अगला अगले अगले सप्ताह का टॉपिक आप बताएं।
जी जी,
ये आपके जिम्मे है आज के टॉपिक बताने का।
शुक्रिया। मैं टॉपिक को पहले मैं इन चार लाइनों में बयां करना चाहूंगी, जिसमें मैं चाहती हूँ कि लिसनर्स और आप गेस करें कि क्या टॉपिक होगा ये।
जी बिल्कुल।
कुछ चंद लाइनें पंजाबी में हैं, अगर कहेंगे तो मैं हिंदी में भी इसका मतलब।
अरे कोई बात नहीं, मनु सर है ना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
जिदा ऋण कोई ला नहीं सकता, जिदा ऋण कोई ला नहीं सकता, कोई उपकार भुला नहीं सकता, स्वर्ग जिन्नू कहंदे ओदे चरणा दे लग के परछावां, जू हुंदियां ठंडियां छावां। बताइए।
माँ के
कदमों में जन्नत होती है,
मावां ठंडियां छावां,
मावां ठंडियां छावां, क्या बात है।
वाह वाह, कितना खूबसूरत टॉपिक है। और इस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, शायद मनोहर राणा का है, कि अपने दामन को आंसुओं से भिगो देती है, अपने दामन को आंसुओं से भिगो देती है, माँ बहुत गुस्सा होती है तो रो देती है।
क्या बात है, वाह बहुत।
तो खैर वो एक ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है, और हम जानते हैं कि माएं हमारी कितनी दिल की कितनी अच्छी होती हैं। वो किसी अपने बच्चों की तकलीफ उनसे नहीं देखी जाती। और ये भी एक हमारे बुजुर्ग ने, हमारे उस्ताद शायर हैं, उन्होंने कहा था कि वसीम, जिस घर में एक तालीम याफ्ता माँ होती है ना, वह घर तहजीब की यूनिवर्सिटी बन जाती है। है कि नहीं? तो हमारी माओ से ही, हमारी माओ से ही
बहुत
बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और हमारी माओ से ही हमारी तरबियत, हमारे आगे की जिंदगी का एक अच्छा खासा खाका तैयार होता है। वहीं से हम सीखते हैं, समझते हैं और दुनिया को एक नया नजरिया, दुनिया के सामने एक नया नजरिया पेश करते हैं, और माँ से ज्यादा सीखते हैं। और बहरहाल तो ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है। और भी कुछ कहना चाहें मनोज सर इस टॉपिक के बारे में?
जी बिल्कुल। उससे पहले मैं बता दूं कि अगले संडे को मदर्स डे है। वैसे तो एक इस दिन मनाने के लिए कोई ऐसा दिन मुकर्रर नहीं है, हर डे मदर्स डे है। उनके बिना शायद हमारा जीवन ही नहीं है, उनके बिना भी नहीं है, वो हैं तब भी नहीं और नहीं है तब भी नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो उसी पे समर्पित है, भले हमारा प्रोग्राम बुधवार को आएगा, लेकिन क्योंकि मदर्स डे, हर दिन मदर्स डे है, तो हम बुधवार को इसी टॉपिक पर कहानियां चाहेंगे।
तो दोस्तों, हमारे सारे लिसनर्स जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनसे गुजारिश है कि वो सोमवार तक 500 से 700 शब्द में कहानियां लिख भेजें। और हम, आपने तो टॉपिक समझ ही लिया है कि माँ ठंडी छांव होती है, तो टॉपिक से बाहर ना जाएं। जिस तरीके से मोहित जी ने आज कहानी लिखी है, एकदम दिल को एकदम छू गई है वो कहानी, वैसे ही शिद्दत से लिखें, फील करके लिखें, ताकि हम उस कहानी को इसमें प्रेजेंट कर सकें, पढ़ सकें और आपसे बात भी कर सकें उस कहानी के बुनाई के बारे में, कि कैसे वो कहानी आपके दिल से निकली है। और माँ ऐसा टॉपिक है जो, माँ और प्यार, ये दो ऐसे टॉपिक हैं या दो ऐसे लव्ज हैं जो कभी भी ओवररेटेड नहीं हो सकते। और माँ को तो खैर मैं किसी भी परिभाषा से परे समझता हूँ, कि किसी भी परिभाषा में भी उसको बांधा नहीं जा सकता, वो माँ के साथ जो रिश्ता होता है। इसीलिए शायद आपने, मनोज सर आपको याद हो अगर, फिराक गोरखपुरी की वो नज्म जुगनू जो उन्होंने माँ पर लिखी है, बहुत लंबी बहुत तवील नज्म है वो। और मनोहर राणा जैसे शायर ने तो माँ पर ही पूरी किताब ही लिख डाली है। तो बहरहाल हमारे पास कहने को बहुत कुछ है, माँ पर लिखने को बहुत कुछ है। आप अपने माँ के साथ अपने जो छोटी 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 घटनाएं हैं, वाकयात हैं, उनको पिरोएं कहानियों में और हमें भेजें kahanibuno@gmail.com पर, kahanibuno@gmail.com। जी दीपिका जी,
दीपिका जी एक बार ना, दीपिका जी इसको एक बार लिख भी दीजिए कमेंट में ना,
जी बिल्कुल।
बिकॉज आज आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि काफी नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ
आज। अभी मैं मैसेज पढ़ रही हूँ, अर्चना चाओ जी ने बहुत बढ़िया एक बात कही है माँ के ऊपर। माँ होती है बरगद और तुलसी हर घर की छाया, करती आंचल से और आंगन बुहारती घर घर की।
क्या बात है,
क्या बात है, क्या बात है।
आप दीपिका जी, आप जल्दी से कमेंट में ना प्लीज ईमेल
जी, वही कर रही हूँ जी, kahanibuno@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है, जिसमें 500 से 700 शब्दों में आपने कहानी लिखकर हमें सोमवार तक भेजनी है, और टॉपिक माँ मामा ठंडिया छावा।
जी कहानी आप थोड़ा सा पंजाबी टच देते हुए भी लिख सकते हैं और अच्छी लगेगी अगर लिखना चाहें तो। बहरहाल ये अपने आपकी भाषाई वो है कि आप किस भाषा में लिखना चाहें, लेकिन हिंदी प्रेफर करेंगे। बहरहाल तो सबको बहुत सबको शुक्रिया हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए। मनोज सर का शुक्रिया, मोहित जी का बहुत शुक्रिया
जी, उन्होंने मोहित जी का कहानी बहुत बहुत शुक्रिया, सबका, सारे लिसनर्स का जुड़ने के लिए बहुत थैंक यू। मनोज जी स्पीकर में जुड़ने के लिए
गुड इवनिंग, गुड नाइट।
इफ यू एंजॉयड दिस, download the Mensa app and start your own live audio conversation.